ओम शांति। मधुबन में बाबा की तपोभूमि कर्मभूमि में भट्टी करने का चांस मिले तो कितना बड़ा सौभाग्य कहेंगे, है ना? नेचुरली बेफिक्र बादशाह हो जाते हैं, हाँ? मधुबन में नेचुरल ही बेफिक्र बादशाह हो जाते हैं तो और क्या अनुभव करना है। अनुभव ही तो हो गए ना 3 दिन में, तो इतने बढ़िया अनुभव आपने किया होगा कि सचमुच सुबह अमृत वेले से लेकर सारा दिन कैसे बाबा की शक्ति का अनुभव होता है और ऐसे लगता है कि यहाँ कोई फिक्र नहीं है। इतना जैसे पीस पैलेस बन गया है मधुबन, शांति स्तंभ यहाँ होने कारण पीस पैलेस बन गया है आप सबके मौन भट्टी के कारण। लेकिन यही स्थिति यहाँ से जाने के बाद भी बनी रहे ये महत्व है कि बॉम्बे जैसी मायावी नगरी में भी अगर ये स्थिति रहे तो क्या कहेंगे, तब कहेंगे कि हाँ रियल तपस्या करके आए हैं, मधुबन से अपनी झोली को भर करके आए हैं, तब ये कहेंगे। तो नेचुरल रूप में बेफिकर बादशाह कब रह सकते हैं? तो ब्रह्मा बाबा की बातों को बाबा हमेशा सीजन में कहते थे, बच्चे ब्रह्मा बाबा ने जो कदम रखा उस पर आप अपना कदम रख दो। तो बाबा इतना बेफिक्र बादशाह कैसे था, है ना? बाबा चाहे बेगरी पार्ट चला हो चाहे कैसा भी पार्ट रहा, लेकिन सारे पार्ट में भी बाबा के हिस्ट्री हॉल में चित्र देखेंगे तो किसी भी चित्र के अंदर आप बाबा के चेहरे पर तनाव की रेखा नहीं देखेंगे, कोई चिंता की रेखा नहीं देखेंगे, बेफिक्र बादशाह, है ना? तो कैसे बाबा ने ये स्थिति को प्राप्त किया? तो सबसे पहली बात है, जो पहला फाउंडेशन है, निश्चय बुद्धि। हमेशा बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि बनने से निश्चिंत स्थिति। अगर मेरे जीवन में या मेरे चेहरे पर अभी भी चिंता की रेखा आ जाती है, माना कहीं न कहीं निश्चय का फाउंडेशन मेरा पक्का नहीं है। तो ब्राह्मण जीवन में निश्चय का फाउंडेशन जितना पक्का होगा उतनी निश्चिंत स्थिति या बेफिक्र बादशाह की स्थिति रहेगी। अब निश्चय में भी हम जानते हैं कि चारों प्रकार का निश्चय चाहिए, ये नहीं कि एक प्रकार का सिर्फ बाबा में निश्चय है चल जाएगा, नहीं, चारों ही निश्चय के पिलर हमारे जीवन के अंदर मजबूत होने चाहिए। चाहे स्वयं में निश्चय हो तो स्वयं में भी कोई डाउट नहीं, पता नहीं पता नहीं पता नहीं, है ना? इसी तरह बाबा में भी निश्चय बुद्धि, ड्रामा में भी निश्चय बुद्धि, और चौथा परिवार में भी निश्चय बुद्धि। तो जिसके पास ये निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है, कहीं पर भी कोई भी प्रकार का डाउट्स न हो या क्वेश्चन न हो। बहुत सुंदर अभी हम सभी ने गीत सुना, सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, है ना? और यही ब्राह्मण लाइफ है कि सदा खुश रहे मुस्कुराते रहे। लेकिन ये खुशी गायब होने का कारण क्या है, जो हमें अनेक प्रकार के व्यर्थ संकल्प या चिंताओं में ले आती है? तो खुशी गायब होने का कारण क्या है, जहां कहीं भी क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता अपनाया कि खुशी गायब, चिंताओं का स्वरूप बन जाएंगे। दादी गुलजार हमेशा कहती है कि 5 सवाल जो है ये हमारी खुशी गायब कर देता है। कौन से? हाँ, क्यों, क्या, कैसे, हाँ, कब, कहाँ, ये पांच सवाल ही सारे खुशी को गायब कर देते हैं। और देखा जाता कि कई बार ब्राह्मण उसी में उलझ जाते हैं, ये पांच सवाल के अंदर ही उलझ जाते। कोई भी दृश्य देखा तो फुल स्टॉप लगाने के बजाय क्वेश्चन मार्क शुरू होगा, और वही हमारी स्थिति को बेफिकर बादशाह से नीचे गिरा देते हैं। अब क्वेश्चन पूछना एक होता है जिज्ञासा के आधार पर, कि कोई बात जान लिया कि उसके मानो ज्ञान के कोई गुह्य रहस्य है, तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे किया जाए, उसके लिए सवाल पूछा ताकि हमारा मार्ग सहज हो जाए। लेकिन जैसे इंक्वायरी करने के हिसाब से जो क्वेश्चन चलता है, कई लोग सुनते हैं ऐसे कहते हुए, क्या कहते हैं, अरे बड़ी चालाकी से मैंने ये बात निकाली उससे। अब चालाकी से बातें निकाल लिया, पता चला, पता चलने के बाद स्थिति क्या रहेगी, खुशी रहेगी? माना से तो बाद में यही अंदर में आता है, नहीं जानते थे तो अच्छा था, है ना? लेकिन जानने के बाद कैसी स्थिति हो गई, कितना व्यर्थ संकल्प को जन्म दे देते हैं। तो माना चालाकी को यूज किया तो भी कहां यूज किया, अपनी स्थिति को गिराने में, तो इसको समझदार कहेंगे क्या? तो इसीलिए अगर ड्रामा में यही है कि आप अगर उस बात को न जानो तो चालाकी से जानने का प्रयत्न ही नहीं करो, क्योंकि उससे अगर मेरी स्थिति खराब होने वाली है, व्यर्थ संकल्पों का तूफान चलने वाला है, ये भी ऐसा कहेगा, ये भी ऐसा बोल रहा है, ये भी ऐसा सोच रहा है, तो जब आपको ये पता चले तो उसे लगता था कि नहीं जानते थे तो ज्यादा अच्छा होता था, जान करके तो और स्थिति खराब हो गई हमने, है ना? तो इसीलिए कहा कि ये पांच सवाल जो है हमारी स्थिति को डगमगा देते हैं, हमारे निश्चय के फाउंडेशन को हिला देते हैं। तो उसी से जब तक निश्चय बुद्धि पक्के नहीं बनते हैं, और हमेशा माया पेपर अगर लेती है तो निश्चय का ही पेपर लेती है। कोई भी पेपर जीवन के अंदर आता है, ब्राह्मण जीवन में पेपर आया, माना ये चारों में से कोई भी एक निश्चय के फाउंडेशन को वो हिलाता है, या परिवार में से निश्चय कम होने लगता है, ऐसा ब्राह्मण परिवार, या ज्ञान में निश्चय बुद्धि थोड़ी कम हो जाती है, या ड्रामा, मेरा ही ड्रामा ऐसा होना था, मेरे साथ ही ये होना था, मेरे को ही ये कहना था, है ना? तो ड्रामा में निश्चय की कमी हो जाती है, या बाबा में निश्चय की कमी, बाबा भी ऐसे बच्चों को चुनता है, अरे भगवान तभी तो है ना, भगवान सिद्ध कैसे होगा, अच्छे अच्छे को ही अच्छा बना दिया तो उसको भगवान थोड़ी कहेंगे, कैसे कैसे को भगवान अपना बना करके उसको जब सुधारता है तभी तो अंतिम समय भगवान की, वही तो प्रत्यक्षता में गायन होगा कि वाह भगवान तेरी लीला भी अपरंपार, तभी तो कहेंगे अच्छे को ही अच्छा बना दिया, अच्छे को ही ज्ञानी तू आत्म, योगी तू आत्म बना दिया, तो भगवान की बड़ाई क्या है। तो इसीलिए बाबा जो चुनता है ना, वो ऐसे ऐसे चुनता है, हाँ? और उनको बना देता है, मूर्ति बना देता है, भले मूर्ति तो अंत में ही बननी है, है ना? तो उसी को कहा जाता कि जब ऐसे बच्चों को भी चुना हुआ देख करके और उसके साथ संस्कार टक्कर होने के बजाय हम उस बात में भी निश्चय बुद्धि के भगवान का चुना हुआ रतन है ना, भगवान ने उसको सिलेक्ट किया है ना, तो जरूर कुछ तो बात होगी, तभी तो सिलेक्ट किया है उसको। तो तो माना अगर मैं रिजेक्ट कर देती हूँ, क्या फालतू आत्मा है, बेकार की आत्मा है, कहाँ ज्ञान में आ गई ये आत्मा, तो उसको भगवान के प्रति निश्चय बुद्धि कहेंगे। मैंने भगवान की शक्ति पर भी मैंने डाउट कर लिया ना, तो इसीलिए जैसे कोई परिवार में कोई अगर अपाहिज होता है, कोई किसी रीति से डिफेक्टेड होता है, तो भी परिवार उसको एक्सेप्ट कर लेता है ना कि हमारा ही भाई है, ये बहन है, ये बच्चा है, ये जो भी है हमारा ही, यही एक्सेप्टेंस हो जाता है ना, और उसके साथ कितना प्यार से पेश आते हैं। तो ब्राह्मण परिवार में भी सारी आत्माएं कोई बहुत अच्छी होगी ऐसे तो नहीं, लेकिन कैसे कैसे को बाबा चुन चुन करके ऐसे विशेष रतन बना देता, तो एक्सेप्टेंस जहाँ आ जाता है कि हाँ ये भी हमारा ही परिवार का सदस्य है, और उसको स्वीकार कर लेना और उसके बाद भी उसके साथ प्यार से व्यवहार करना, इसको कहते हैं भगवान के प्रति निश्चय बुद्धि। ये है भगवान के प्रति निश्चय, अपनी कैपेसिटी में निश्चय। तो जहाँ ये एक्सेप्टेंस लेवल आपका हाई होगा, जो आत्मा जैसी भी है अगर भगवान ने उसको स्वीकार किया है तो मुझे भी उसको स्वीकार, ये है निश्चय बुद्धि। तो वो कोई भी हरकत करेगा ना, वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसकी हर हरकत एक्सेप्टेड है, मालूम है कि ये चलेगा ऐसा। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी बात कि उसको धन्यवाद है कि अभी तक उसने हिम्मत नहीं हारी और बाबा का हाथ नहीं छोड़ा है, माना उम्मीद है उसको भी स्वयं में, तो मैं क्यों उम्मीद छोड़ू उसमें से। ये है परिवार में निश्चय। कैसी भी ड्रामा की सीन आ जाए, लेकिन उसके बाद भी जब ड्रामा के प्रति भी एक्सेप्टेंस अपना हाई हो जाता है, तब कहेंगे कि हाँ ड्रामा में निश्चय। माना तब कोई भी सीन आए, तूफान आए, वो आपकी स्थिति को हिला नहीं सकता है। ड्रामा बहुत सुंदर है। बाबा के सामने जब बेगरी पार्ट आया, चार आना नहीं, अनाज का दाना नहीं, और उसके बाद भी बाबा पहाड़ियों पर जाकर बेफिक्र बादशाह की तरह ऐसे पोज में लेट सकता है, कभी चेहरे पर कोई शिकंज नहीं है ना, कोई शिकायत नहीं कि क्या बाबा तुमने अभी, और कोई दो महीना तीन महीने का पार्ट नहीं था, छह सात साल का पार्ट था, बेगरी पार्ट भी। आज घर में अगर चार मेंबर को खिलाना हो और चार आना न हो और अनाज का दाना न हो तो कितना टेंशन हो जाए। बाबा के सामने 350 बच्चे थे, तो 350 बच्चों को खिलाना, तो उस समय जब ब्रजेंद्र दादी आकर बाबा को बताती थी, बाबा कुछ नहीं है यज्ञ के अंदर, क्या करेंगे, 350 को खिलाना है, बाबा कहते 10 बजे आना बच्चे, इतना निश्चिंता से 10 बजे आना, दादी 5 मिनट पहले पहुंच जाते, अच्छा 5 मिनट जल्दी आए बैठ जाओ, कोई बात नहीं है ना, पता नहीं कौन से खजाने से निकालने वाले हैं भगवान। मना भावार्थ ये कि बाबा के चेहरे पर फिर भी टेंशन नहीं, और इसीलिए जब 10 बजे ठीक पोस्ट में आता था और मनी ऑर्डर आता था, दादी इशु दादी से हम बात कर रहे थे दो चार दिन पहले कि दादी मनी ऑर्डर कितने रुपए का आता था, तो दादी ने कहा मैक्सिमम अगर मनी ऑर्डर आया ना 500 रुपए का आता था, उससे ज्यादा कभी नहीं आया। तो मैंने कहा तो 500 रुपए में क्या होता था, 350 रुपए कितना दिन खिला, बोले उस समय तो सस्ताई का जमाना था ना, तो 500 रुपए भी तो काफी दिन चल जाते थे जैसे, लेकिन 500 रुपए जब आता था तो लगता था कितना सारा पैसा आ गया, ऐसा महसूस होता था बहुत सारा पैसा आ गया। और कहा कि उसी समय जैसे बाबा दे देता था, जाओ बाजार में जाओ अनाज ले आओ, पिसाओ आटा बनाओ और ढोडा और छाछ खिला दो सबको, है ना। जब ये बेगरी पाठ पूरा हुआ तब बाबा से पूछा, कि बाबा आपको कभी टेंशन नहीं हुआ, कुछ नहीं। अगर मान लो कि ये मनी ऑर्डर नहीं आता था फिर क्या करते थे, टेंशन नहीं होता था आपको? बाबा ने क्या जवाब दिया होगा? बाबा ने कहा, बच्चे किसके, मेरे थोड़ी है, बच्चे किसके हैं, मेरे हैं क्या, उसके बच्चे हैं ना, मैं तो खाली संभालने वाला हूँ, निमित्त हूँ, तो वो संभालने वाला, उसके बच्चे हैं तो उसको चिंता होनी चाहिए, मुझे चिंता होनी चाहिए। फिर बाबा कभी कभी कह देता, बच्ची भोग किसको लगना था, पहला भोग किसको लगता है, यज्ञ में बाबा को ही भोग लगता है, तो कभी भक्ति में भी ऐसा नहीं हुआ कि भोलेनाथ को भोग न लगा हो। तो यहाँ तो साक्षात थे, कैसे वो भूखा रहता, और वो अगर भूखा रहता था तो हम तो भूखे रहते थे, उसमें क्या बड़ी बात है। और भगवान भूखा रहे ये तो कभी भक्ति में भी नहीं हुआ। तो ज्ञान मार्ग माने कितना निश्चय। और इसीलिए जब बाबा कहते बच्चे सौंप दो मुझे, आपकी जो बोझ की टोकरी है मुझे दे दो, लेकिन हम क्या करते हैं, कहने में कह देते चलो दे दिया, लेकिन फिर नहीं होता है वापस, अरे मैं निमित्त हूं ना मैं, लेकिन निमित्त भी निश्चिंत। ब्रह्मा बाबा भी निमित्त थे लेकिन निमित्त होते हुए भी निश्चिंत, क्योंकि इतना भरोसा था। और जहां भरोसा होता है तो वहां भगवान भी उस भरोसे की लाज रखता है। तो ऐसा जब स्थिति हमारी अंदर की हो जाए तब सचमुच में बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं, नहीं तो बेफिक्र बादशाह नहीं बन सकते हैं। दूसरी बात, बेफिक्र बादशाह रहने के लिए कि या तो अंदर में इतना ज्यादा जमा हो जो निश्चिंत है कि कुछ नहीं होने वाला है, इतना हमारे पास है कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी खा सकते और कुछ नहीं होने वाला है, हमको कोई हिला नहीं सकता, माना इतनी भरपूरता हो तब निश्चिंत रह सकते हैं। तो या तो हमने अपने जमा के खाते इतने भरपूर कर दिए हो, है ना, सारे खजाने हमारे भरपूर जमा हो, जो हमें निश्चिंत कर देता है, जो अंदर से एक प्रसन्नता संतुष्टि ले आता है कि कुछ भी अगर आएगा तो भी हम सक्षम हैं, इस खजाने से उस बात को खत्म कर देंगे, है ना। तो कितने खजाने हैं हमारे पास में, पहले ये तो मालूम हो कितने खजाने हैं, कितने खजाने हैं। सबसे पहला खजाना है हमारा समय का खजाना, संगम का समय अमूल्य है, तो ये अमूल्य खजाना हमारे पास है। दूसरा खजाना है संकल्प का खजाना, फिर वाणी का खजाना वाचा शक्ति, फिर कर्मणा शक्ति का खजाना है हमारे पास, है ना। उसके बाद ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, धारणाओं का खजाना, धारणाओं में भी गुणों की धारणा का खजाना, शक्तियों की धारणा का खजाना, है ना। फिर दुआओं का खजाना, जो सेवा करते हैं तो दुआओं का खजाना प्राप्त होता है ना। तो खजाने, खुशी का खजाना, समय, श्वास, शक्ति, संकल्प, हाँ, ये सारे खजाने हमारे पास है। अब कितने खजाने हो गए, तो ये सारा खजाना हमारा भरपूर है, जमा जमा भरपूर होना चाहिए, क्योंकि जितना हमारा ये खजाना जमा होगा उतना तो बस बेफिक्र बादशाह। उसमें भी सबसे अमूल्य खजाने जो है वो है खुशी का और दुआओं का खजाना। ये दो खजाना अगर है हमारे पास भरपूर तो भी आप बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं, है ना। और ये बेफिक्र बादशाह बनने के लिए ये खजाने हमारे लीकेज नहीं होने चाहिए। लीकेज कहां से होता है? व्यर्थ, व्यर्थ समय, व्यर्थ वाणी, व्यर्थ संकल्प ये हमारा लीकेज है, व्यर्थ कर्म। तो ये हमारी खुशी को भी गायब करेगा और हमारी स्थिति को भी डावाडोल कर देता है। इसलिए लीकेज को चेक करो कि कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है। इसके लिए जैसे बाबा ने कहा, दिन के अंत में अपना चार्ट देख लो कि आज कौन से हाँ, जैसे ब्रह्मा बाबा के जीवन कहानी में हम सभी सुनते हैं कि बाबा के शरीर छोड़ने के बाद बाबा के कबाट में से डायरी मिली थी, जिस डायरी के अंदर बाबा चार्ट लिखता था और रात को रोज बाबा सोने से पहले अपनी दरबार लगाता था। और कैसे दरबार लगाता था, तो बाबा बात करता था जैसे आत्मा मालिक होकर के बात करती थी, हे मन मंत्री, आज तेरे सारे कर्मचारी तेरे ऑर्डर में रहे, कोई कर्मचारी ने धोखा तो नहीं दिया तुझे, आंखें ठीक रही, मुख ठीक रहा, कान ठीक रहे तेरे, ये सारे कर्मेंद्रियां कर्मचारी तेरे ऑर्डर में चले, है ना। माना एक रमणीक ढंग से जिससे चार्ट चेक करने में भी आनंद आए, मन हो कि आज कौन सी इंद्रिया ने अवज्ञा की है तो उसको सजा देनी पड़ेगी तुमको। तो माना जैसे दरबार लगाता था और राजा बन करके जैसे बाबा चेक करता था अपनी दिनचर्या को, माना कितना रमणीक ढंग से। और इसलिए बाबा जब चेक करता था अपने आप को और फिर अपने आप में चेंज ले आता था तो बेफिकर बादशाह, वहीं कोई कर्मेंद्रिया धोखा नहीं दे रही है। तो इस विधि से जैसे रोज अपनी दरबार लगाएं और फिर मालिक बन के राजा बन करके जैसे निश्चिंता से सो जाना, ये बेफिकर बादशाह। तो नींद को भी जीतने वाले बन जाए, है ना, राजा जैसे सोता है इस तरह से जैसे निश्चिंत होकर के सो जाना, कोई चिंता का बोझ लेकर के सोने वाले नहीं, लेकिन सारा हिसाब किताब क्लियर करके अंदर से सारा नफा नुकसान देख करके फिर कल मुझे क्या करना है उसके हिसाब से उसका सारा प्लानिंग कर दिया और फिर रात को निश्चिंत होके सो गए। तो नींद भी बेफिक्र बादशाह वाली है ना। तो इसीलिए कहा कि बाबा हमेशा इस बात के ऊपर जोर देता है कि बच्चे अपने चार्ट को चेक करो, रोज रात को अपनी दरबार लगाओ और मन मंत्री से पूछो कि मन मंत्री की किसने नहीं सुनी। माना मन मंत्री ऐसा रहा, मंत्री के रूप में रहा मन भी, कि मन खुद ही चंचल होता रहा, मंत्री खुद ही ऐसा रहा, तो ये चेक करते थे इस तरह से, तो बेफिकर बादशाह रहना आसान हो जाता है। कहीं कोई खजाना हमारा वेस्ट तो नहीं गया आज, कहीं कोई लीकेज तो नहीं हो गई, कहीं कोई चोर अंदर से घुस के आए हो ऐसा तो नहीं हुआ। तो ये जैसे रमणीकता से अपने चार्ट को चेक करना ताकि अंदर से एक भरपूरता की स्थिति, जितना अंदर से भरपूर रहेंगे उतना बेफिकर बादशाह होना आसान हो जाएगा, है ना। तीसरा बेफिकर बादशाह होने के लिए फुल स्टॉप, अगर कोई बातें दिन भर में आ जाती है तो फिर उसी समय फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए। अगर फुल स्टॉप नहीं लगा, आश्चर्य की मात्रा लग गई, कॉमा लग गया, तो भी क्या होगा, थोड़ी देर बंद हुआ फिर कॉमा लगा तो वापस चालू हो जाएगा व्यर्थ संकल्प। तो इसलिए फुल स्टॉप लगाने के अभ्यासी चाहिए। जितना ये अभ्यास ज्यादा होगा, और फुल स्टॉप लगाना माना परिवर्तन, परिवर्तन मोड़ ले लेना। माना मालूम है कि इस रास्ते पर ट्रैफिक बहुत है तो समझदार व्यक्ति क्या करता है, टर्न कर लेता है, दूसरा रास्ता ले लेता जो खाली मिले, हाईवे मिले उसको, है ना। तो माना जब देख रहे हैं कि यहाँ व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलेंगे तो अपने संकल्पों को भी मोड़ दे देना, मोड़ देना, और फिर विचार सागर मंथन करने वाली चीज को अपना लेना, परिवर्तन, संकल्पों में परिवर्तन। और परिवर्तन में भी बेफिक्र बादशाह बनने के लिए नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले। प्रवृत्ति मार्ग में रहते हैं, बातें तो आएंगी। ये तो नहीं है कि बातों से फ्री हो जाएंगे। 10 लोग आपको सुनाने आएंगे, मित्र संबंधी होते हैं तो सुनाने तो आएंगे, आपसे राय लेने आएंगे, तो फालतू बातें आपको सुननी पड़ेगी। लेकिन फिर वो बातें हैंगओवर न हो हमारे ऊपर, या प्रभाव न डाल दे हमारे ऊपर, हमारी आंतरिक स्थिति को एकदम परेशान में न ला दे, इतना डिटैच होकर के बातें सुनना और फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए, है ना। इतना जैसे अपने अंदर कंट्रोलिंग पावर हो तो परिवर्तन। फुल स्टॉप लगाना माना कोई चीज थोड़ी उठा करके लगा दिया, फुल स्टॉप, बस बंद हो गया संकल्प, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसीलिए अगर उसको परिवर्तन नहीं किया गया तो वो चालू रहेगा। इसीलिए नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेना। कैसा भी दृश्य आ जाए उसमें कल्याण को देखना कि इसमें भी क्या कल्याण समाया हुआ है। जब कल्याण को देखेंगे तो खुशी होगी, तो बेफिक्र हो जाएंगे। जब प्रॉब्लम को देखेंगे तो चिंता में आ जाएंगे, टेंशन हो जाएगा, नेगेटिव सोचेंगे, लेकिन कल्याण को ढूंढ लो, है ना। जब कल्याण को देखेंगे, कल्याण को ढूंढेंगे, खुशी होगी। जैसे बाबा हमेशा मिसाल देते थे कि बच्चे हीरे कहाँ मिलते हैं? कोयले की खान में। लेकिन जो हीरा ढूंढने जाता है ना, वो अगर कोयला देखने लगे तो उसको हीरा नजर भी नहीं आएगा और उदास हो जाएगा, चारों तरफ काला ही काला है, काला ही काला है। तो बाबा तो हीरे का व्यापारी था ना, तो बाबा हमेशा यही बात कहते थे कि बच्चे हीरे को ढूंढने वाले की नजर हीरे पर ही रहती थी कि हीरा कहाँ है। उसको काला नहीं दिखता था, उसकी आंखें हीरे को देखती थी। तो इसी तरह हमें भी चारों तरफ से बातें कितनी भी परेशान करने वाली हो, लेकिन उसमें क्या कल्याण समाया हुआ, उस हीरे को ढूंढना है। तो इसीलिए बाबा कई बार कहते, बच्चे तुम बच्चे भी बाप की तरह हीरे के व्यापारी बन जाओ, तो कल्याण को ढूंढने वाली दृष्टि को एडॉप्ट कर लो। इसमें क्या कल्याण है? अच्छा, कोई कल्याण नजर नहीं आता है आपको, मानो कि इसमें कोई कल्याण है ही नहीं, तो फिर सोचो, अच्छा ये बात मुझे क्या सिखाने आई है, कुछ ऐसा अमूल्य लेसन मुझे पढ़ाने आए जिसको पढ़ना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल करके वो परीक्षा इस रूप में मेरे सामने आएगी कि अगर मैंने ये अनुभव का लेसन नहीं लिया तो उस समय बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ऊंचे से गिरने वाली स्थिति का अनुभव होगा। इसलिए ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है, कौन से गुण की शक्ति की धारणा कराने आई है, किस बात में मुझे अनुभवी बनाने आई है। अनुभवी बन जाएंगे तो भी खुशी होंगी, अनुभव का रतन मिल गया आपको, है ना, जीवन के लिए ये भी तो अमूल्य है। तो ये सीखने को मिलना उस परिस्थिति के द्वारा, अनुभवी बनने को मिलना, ये भी तो बेफिक्र बादशाह, ताकि आगे के लिए बेफिक्र बन जाओ। अनुभव के मोती मिल गए, दोबारा कभी धोखा खाएंगे नहीं। ऐसी परिस्थिति आपके सामने अगर आ भी गई तो आप दूसरों को भी गाइड करेंगे कैसे पार करना है, तो ये भी कोई कम बात थोड़ी है। या तीसरी बात, बाबा का प्यार महसूस करो कि ऐसी परिस्थिति में जितना बाबा को याद करेंगे तो बाबा की छत्र छाया महसूस होगी। बाबा के प्यार को अनुभव करो, बाबा कुछ देना चाह रहा है, आपको कोई विशेष वरदान देना चाह रहा, इसलिए ये परिस्थिति आई। जैसे कोई बच्चे को आप ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो और फिर भी वो कर लेता है तो आप क्या कहेंगे? उसको वरदान दे देते हैं ना, आशीर्वाद दे देते हैं। तो इसी तरह ये डिफिकल्ट परिस्थिति अगर ड्रामा में मेरे सामने आई है तो इसका मतलब बाबा का कोई विशेष वरदान मिलने वाला है। और बाबा के वरदान को अगर महसूस करो उस वक्त तो कितनी खुशी होगी। बेफिक्र बादशाह बनना कौन सी बड़ी बात है। तो इसीलिए परिवर्तन शक्ति को अपनाना, जिसको परिवर्तन शक्ति को अपनाना आता हो, उसकी कला आती हो कि अब ये परिस्थिति से या कोई व्यक्ति मानो आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जो आपको तकलीफ दे रहा है, कष्ट दे रहा है, तो उस समय क्या करना चाहिए? चलो परिस्थिति को तो आपने लेसन समझ करके पार कर लिया, या मुझे बाबा का विशेष वरदान का अनुभव हुआ ये समझ करके पार किया, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा करता है और जानबूझ के करता है तो किनारा नहीं करना है। हमारे परिवार का है ना, वो भी बाबा का बच्चा है ना, तो उसके प्रति शुभ भावना का दान दो। माना ऐसे समय में भी मैं अगर दुआ दे सकती हूँ या नहीं दे सकती हूँ ये मुझे पता कैसे चलेगा? तो मेरे सामने कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरे मन से या अंदर से उसके प्रति गाली निकल रही है, बुरे वचन निकल रहे हैं, श्राप निकल रहा है या दुआ निकल रही है। तो ये जो ऐसे समय में भी अगर दुआ निकले तब समझो पास। ऐसे समय में भी दुआ निकले अंदर से तो ये समझ लो कि अब अंतिम समय कैसी भी परिस्थिति, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति आपको फेल नहीं कर सकता है। तो ये टेस्ट पेपर्स तो आएंगे ना बीच बीच में, चाहे व्यक्ति, परिस्थिति, समस्याएं, बातें, हाँ ये तो आएंगी। प्रवृत्ति में है आप, तो प्रवृत्ति में नहीं आएंगी तो कहाँ आएंगी? तो इसीलिए जब कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार, तो उस समय देखो क्या मेरे मन से शुभ भावना निकल रही है, तो मैं बेफिक्र बादशाह रहूंगा, उनकी बातों का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं, मैं ऊपर हो गया वो नीचे हो गया। तो ऊपर जो है, अगर हम नीचे चले गए तो माना उसकी बातों का फुल प्रभाव हमारे ऊपर, और वो कितने दिनों तक व्यर्थ संकल्प चलाता रहेगा। इसलिए आप नीचे नहीं, आप ऊपर हो जाओ और उसको देने वाला दाता बन जाओ। जब उसको देने वाला दाता बन जाए तो उसकी बातें आपको परेशान, वो उसकी बातें जो व्यर्थ होती है, तो व्यर्थ बातें ऊपर नहीं आती, वो नीचे ही जाती है। नेगेटिव बातें ऊपर फ्लोट नहीं कर सकती, वो नीचे ही जाती, भारी होती है, वो नीचे ही जाती है। तो उसकी बातों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ सकता है और तब आप बेफिक्र बादशाह आराम से रह सकते हैं, है ना? तो इसलिए कहा परिवर्तन शक्ति को कितना अपना सकते हैं, बातों को परिवर्तन करना, कल्याण को ढूंढना, लेसन सीखना, अनुभव को प्राप्त करना और आत्माओं को ऐसे समय में भी दुआएं देना। ये है भरपूरता की निशानी भी, क्योंकि भरपूर होंगे तभी दे सकेंगे, भरपूर ही नहीं है तो कैसे दे सकेंगे? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बेफिक्र बादशाह बनने के लिए खजाने से भरपूर रहो और परिवर्तन शक्ति को अपनाना आना चाहिए। इसके जितना अभ्यास होगा तो अंतिम समय जब पेपर वन बाय वन ऐसे फटाफट आएंगे, एक साथ में आएंगे सीरीज के रूप में, तब आप उस समय ये अभ्यास वहां, इसीलिए बाबा कई बार कहते बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बहुत काल का अभ्यास माना जीवन में हर क्षण ये परिवर्तन शक्ति के अपनाने के अभ्यासी होने चाहिए, तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, है ना? और एक बेफिक्र बादशाह रहने के लिए और एक सुंदर सहज तरीका आपको बताते हैं, जो बाबा कई बार हम बच्चों को मुरली में कह चुका है, वाह वाह के गीत गाओ बच्चे, है गीत गाना आता है ना, है ना। तो जब बाबा के मुरली सुनते उस समय तो गीत गाना बहुत अच्छी तरह से आता है, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, है ना। तो उस समय भी जब कोई पेपर आए उस समय अगर वाह वाह के गीत गाएं कि वाह मेरा भाग्य वाह बाबा वाह, ये गीत जब अंदर से निकले तो बाबा ने एक मुरली में ये वरदान दिया हुआ है कि अगर परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों न हो, विपरीत क्यों न हो, लेकिन अगर आप वाह वाह के गीत गा सकते हैं तो परिस्थिति भी हाय हाय के बदले वाह वाह बन जाएगी, बदल देंगे आप, इतनी ताकत है ये गाने में। इसलिए बाबा कई बार पूछते गाना गाना आता है, गाना गाना आता है, गाना गाना आता है, बाबा बार बार पूछता है, कई बार मुरली में सीजन में एक बार तो जरूर पूछेगा गाना गाना आता है, है ना। माना ये गाने में इतनी ताकत है, भगवान का वरदान समाया हुआ है। जो जैसे ही गीत गाना शुरू किया ना तो स्थिति कैसी हो जाएंगी, खुशनुमा, है ना। ये याद आता है एक भाई खाली इसी बात का अभ्यास करता है, कुछ भी उसके सामने आता है ना इसी बात का, वाह 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 वाह, उसके सामने भोजन की प्लेट आप रखो, वाह क्या ब्रह्मा भोजन खाने का भाग्य मिला है, है ना। उसका उसने अभ्यास डालना शुरू किया कि माना खाना आया तो जब वाह कह के खाता है ना तो कभी उसकी कंप्लेन नहीं कि इसमें ये चीज अच्छी नहीं लगती है, इसमें नमक कम है, मिर्ची कम, उसमें भी कई बार प्रवृत्ति में रहते तो गुस्सा तो आ ही जाता है ना, है ना, ये खाना ठीक नहीं बना, ये क्या खाना बना है, प्रवृत्ति है ना, इसी का नाम तो प्रवृत्ति है, है ना। आश्रम में कोई गुस्सा कर सकता है, थाली फेंक सकता है ना, नहीं कर सकता है, तो ये तो प्रवृत्ति की बातें हैं। तो वो भाई को मैंने देखा, मैंने उसको पूछा, कहता नहीं मेरा अभ्यास है ये कि मैं वाह वाह का गीत कितना गा सकता हूँ। तो दिन में वो कितनी बार कोई भाई या बहने मिलेंगे, अरे वाह क्या भाग्य है आज आपसे मिलने का, तो सामने वाला भी खुश, वो अगर गुस्सा करने आया होगा तो भी उसका। तो मैंने देखा उस भाई को खाना आया तो भी कहेगा वाह क्या आज तो ब्रह्मा भोजन मिला है, है ना। तो परिवार बनाने वाले को भी कितनी खुशी होती है, अच्छा जिसको भी मिलता है वाह क्या भाग्य आज आपको मिलने का, वो भी खुश हो जाता है कि भाई मेरे से मिलने का भाग्य समझता है वो। तो वो अगर गुस्सा करने आया होगा तो भी क्या करेगा, उसका भी सोडा वाटर हो जाएगा, सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। तो मैंने उस भाई के जीवन में देखा कि इसीलिए उसका चेहरा जब देखो आप मुस्कुराता हुआ, इतना खिला हुआ, क्योंकि वो वाह वाह का गीत गा रहा है, हर कदम में वाह वाह का गीत गाता है। मैं कब पहले नहीं समझती थी उस बात को, मैं अंदर में सोचती थी क्या इसमें वाह वाह, इस भाई को मिला क्या वाह हुआ उसका, है ना। आया था मेरे को भी संकल्प आया, लेकिन एक दिन जब बैठ के बात किया कि आप क्यों ऐसे कहते हो, वो आत्मा को मिलने में आपको क्या वाह वाह महसूस हुआ, क्या भाग्य महसूस हुआ, अरे बहन जी मैं तो अभ्यास कर रहा हूँ कि बाबा जो कहता है वाह वाह के गीत गाओ तो सचमुच में उसका अभ्यास, माना एक ही चीज का अभ्यास लिया है उसने जीवन में, लेकिन उसके बाद उसने मेरे को जो अनुभव सुनाया कि उससे कितने प्रॉब्लम्स उसके क्लियर हो जाते हैं, एक वाह वाह का अभ्यास, माना ज्ञान इतना सागर है उसमें से कोई भी एक चीज का अभ्यास ले लो आप तो भी आपके जीवन में कितना फर्क पड़ता है, आपके व्यवहार में, आपके संबंध में, आपके हर बात में, प्रवृत्ति में कितना फर्क पड़ जाता है। तो और कुछ नहीं करना हो आपको, बस वाह वाह के गीत गाना शुरू करो और उसका अनुभव करके देखो, सचमुच कितना मजा आएगा, लाइफ एकदम बदल जाएंगी कि प्रवृत्ति में रहते भी आपको लगेगा कि आप एकदम एंजॉय कर रहे हैं, दिल से जैसे जीवन, ब्राह्मण जीवन जी रहे हो, खुल के जी रहे हो, कोई बात आपको तकलीफ नहीं करेगी, है ना। जब मैंने कहा चलो ये तो आपने अभ्यास कर लिया, लेकिन मान लो कि आपके सामने कोई समस्या आ जाए, फिर वाह वाह करेंगे? करूंगा ना जरूर, कि वाह अभी मुझे मौका मिला है अपनी शक्ति का प्रयोग करने का, नहीं तो कहाँ प्रयोग करता था। वाह मुझे अभी मौका मिला है शक्तियों का प्रयोग करने का, तो मेरे को इतनी खुशी आ, और वो समस्या मेरे लिए समस्या ही नहीं रहती है, वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही नहीं रहता है, क्योंकि जैसे ही मैंने वाह करके बाबा, और कहीं ऐसे डिफिकल्ट भी हो जाए तो मैं यही कहता हूँ, वाह बाबा वाह, चल अब तुम मेरे साथ में मिल करके हम दोनों सुलझाते हैं, तो बाबा को भी साथ ले लेता हूँ, और बाबा के साथ मिलकर के सुलझाने में और आनंद आता है। तो उसकी लाइफ देखो, उसका चेहरा देखो, जैसे हमेशा रेड होता है, पिंक चेहरा रहता है उसका, खुशियों से ऐसी स्माइलिंग फेस उसका हमेशा रहता है। तो मेरे को आता है कि सचमुच क्या ये भी एक अभ्यास, बस एक छोटी सी चीज उसने पकड़ लिया है, वाह वाह का गीत गाना। बोले बाबा कहते हैं ना गीत गाना आता है, तो सचमुच मैंने गीत गाना सीख लिया है, कि हर बात में मैं ये गीत गाना सीखता हूँ। ये नहीं कि अच्छे समय पर ही गीत गाऊं मैं, लेकिन ऐसे समय पर भी जब मैं ये गीत गाता हूँ ना, मेरे को बड़ी प्राप्ति अनुभव होती है। तो बेफिक्र बादशाह है, वाह वाह का गीत गाने के अभ्यासी बन जाओ। कौन कहता है आपको कोई फिक्र चिंता होगी? होगी कोई चिंता? नहीं हो सकती है। हाँ, कोई परीक्षा आई, कोई प्रॉब्लम आया, तो वहां मुझे अपनी शक्ति का प्रयोग करने का यही तो चांस मिला है, इससे अच्छा चांस और कौन सा हो सकता है। यही तो समय है कि मैं ज्ञान का प्रयोग करूं, यही तो समय है मैं शक्ति का प्रयोग करूं, यही तो समय है मैं अपने योग की शक्ति का प्रयोग करूं, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो इसीलिए बाबा जब कहता है ना, तो बाबा के हर बात में इतनी गहराई है कि मैंने देखा कि ब्राह्मण जब कोई भी एक बात को भी पकड़ लेता है ना, जीवन के अंदर बदल जाता है, लाइफ की क्वालिटी बदल जाती है। एक वाह वाह के अभ्यास से कितनी उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बदल गई, उसका व्यवहार बदल गया सबके साथ में, है ना, उसका जैसे इंटरेक्शन में अंतर आ जाता है, उसकी दिनचर्या में अंतर आ जाता है, और बाबा की याद निरंतर बनी रहती है, क्योंकि वाह वाह के गीत गाने के बाद जब खुशी होती है तो क्या निकलता है, वाह बाबा वाह, थैंक्स बाबा निकलता ना, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, बहुत अच्छा हो गया, सफल हो गया इसमें। तो बाबा जैसे कि दुनिया में भी कहते हैं कि खुशी ऐसी एनर्जी है, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है कि कोई नेगेटिव बात अगर आए उस पर भी अगर इसका प्रयोग किया जाए इस विधि से, तो वो परिस्थिति को बदलने की ताकत रखता है। तो यही तो बेफिक्र बादशाह होने की सीक्रेट है, इससे बड़ी सीक्रेट और क्या हो सकती है। तो इसीलिए आज से इतना गीत गाना तो आएगा ना कि नहीं आएगा, प्रवृत्ति में रहते बस आएगा, खाना जब आए तो कहो वाह बाबा वाह, है ना, क्या ब्रह्मा भोजन खाने को मिला है। और इस विधि से आप खाओ तो वो खाना भी आपको क्या होगा, हजम होगा, क्योंकि पहले से ही आपने जैसे उसमें वो एनर्जी भर दी, खुशी की एनर्जी भर दी, तो खुशी की एनर्जी से आप वो खाना खाएंगे तो वो आपको कहीं तकलीफ दे सकेगा? नहीं दे सकता है। और देखो फिर आपके जीवन ही बदल जाएंगे, सबके साथ का इंटरेक्शन का स्वरूप आपका बदल जाएगा, लोग भी आपको कहने लगेंगे अरे आजकल बड़े खुश नजर आ रहे हो, बड़े खुश नजर, क्योंकि आपका चेहरा ही वाह वाह करते करते क्या हो जाएगा, चेहरा ही खुश हो जाता रहेगा, है ना। तो इसीलिए जब ऐसा चेहरा देखेंगे तो लोग भी आपको कहेंगे, आपके साथ बैठना चाहेंगे, बातें करना चाहेंगे कि क्या सीक्रेट है ये तो बता दो, और आप उनको भी ये प्रेरणा दे सकेंगे, और सारे सांता क्रूज वाले वाह 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 करने लगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बस और क्या है, यही तो सीक्रेट है बेफिक्र बादशाह बनने का। हाँ, सारे बॉम्बे वालों को प्रेरणा दे देंगे, सारा बॉम्बे वाह वाह की एनर्जी से गूंजेगा। तो इसीलिए बस माया भाग जाएंगी, कहाँ जाएंगी, माया रह नहीं सकेंगी ना। खुशी की एनर्जी आपको ऐसा चार्ज कर देंगी है ना कि दिनचर्या बिताते समय भी हल्कापन रहेगा, हल्कापन में आकर के। इसलिए कहा अगर फुल स्टॉप नहीं लगा सकते है ना तो वाह वाह करना चालू कर दो बस, है ना। बाबा ने तीन वाह वाह बताए हैं, तीन बिंदी लगाने के लिए, तो बिंदी नहीं लगती तो वाह वाह करो, है ना, या बिंदी लगाओ या वाह वाह करो। हाँ बिंदी लगाना मुश्किल है तो वाह वाह का गीत गाना तो सहज ही है, गुनगुनाना तो सहज ही होता है, तो गुनगुनाते हुए बस देखो ब्राह्मण जीवन कैसे खुशियों का जीवन, हर घड़ी जैसे आप सेलिब्रेट कर रहे हो खुशियों से भरा, और ऐसी आत्मा को देखकर भगवान भी खुश हो जाता है कि वाह बच्चे तुमने प्रैक्टिकल किया। हाँ तब बाबा की वाह वाह के भी अधिकारी हो जाएंगे। तो बाबा के एक एक शब्द के अंदर जो गहराई है और उसका प्रयोग करके जो अनुभव है बहुत सुंदर है, कभी करके देखिए और बड़ा मजा आएगा। गुस्सा तो आएगा ही नहीं, गुस्सा कहाँ, और खास गुस्से वाला जो व्यक्ति होगा ना उसको तो जरूर गाना चाहिए। है यहाँ कोई गुस्से वाला जिसका एक कमजोरी है, गुस्से वाली अभी तक कमजोरी बची हुई है कि गुस्सा आ जाता है, उस व्यक्ति को तो जरूर ये गाना गाना सीखना चाहिए, है ना। आज खत्म हो जाएगी है ना, तो आज के दिन गुस्से वाला भी ये गीत गाना सीख ले कि हर बात में वाह वाह का गीत गाओ, तो देखो सामने वाला कभी आपको कोई बात के लिए परेशान नहीं कर सकता है ना, टेंशन ही खत्म हो जाएगा। अच्छा टॉनिक मिल गया ना, ठीक है, घंटा कहाँ पूरा हो जाता है पता ही नहीं चलता है देखो। अच्छा हाँ हाँ हाँ, दोनों में निश्चय एक्सेप्टेंस, दुख में भी एक्सेप्टेंस, कंप्लेन करने के बजाय एक्सेप्टेंस की, ये भी ड्रामा है, ये भी ड्रामा का एक सीन है। तो इसीलिए उसको भी एक्सेप्टेंस लेवल जहाँ आ जाता है तो वहां जहाँ उसको स्वीकार करना आ जाए कि ये भी एक मेरे ही कर्मों का हिसाब है जो मेरे सामने आया है, तो मेरे लिए नो कंप्लेन्स। जब कंप्लेन्स नहीं है तो दुख को एक्सेप्ट कर लिया तो सहन शक्ति बढ़ जाएगी। तो अष्ट शक्ति जहाँ है वहाँ विजय माला में आ जाते हैं। तो इसी तरह से क्योंकि सबसे पहली है ये एक्सेप्टेंस पावर, तब सहन करना भी आसान होगा। एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो सहन नहीं हो सकता, वहाँ गुस्सा आएगा। तो दुख को भी स्वीकार कर लेना, इट इज पार्ट ऑफ माई ड्रामा, इट इज ब्यूटी ऑफ ड्रामा। ड्रामा के अंदर अगर सुख और दुख दोनों चल रहा है तो यही तो जीवन की एक सुंदरता है, इट इज ब्यूटी ऑफ ड्रामा। तो जितना आपका एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाएगा उतना सहन शक्ति भी बढ़ेगी, कंप्लेन्स आपकी समाप्त हो जाएंगी, नेगेटिव थिंकिंग खत्म हो जाए, कितने फायदे हैं। इसलिए बाबा कहते ड्रामा में निश्चय, कि सुख हो या दुख हो, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उसमें भी निश्चय, ये भी कल्याणकारी है, इसमें भी कल्याण है समय, ठीक है ना। तो ये है बेफिकर बादशाह बनने की विधि, ठीक है। अच्छा आगे अरे बाबा का ज्ञान ही है, हम कौन सा अपना दिया है कुछ भी, है ना, बाबा का ही तो ज्ञान सुना रहे हैं, इसीलिए अपना तो कुछ है नहीं, तो इसलिए बाबा की ही वाह वाह करने हैं, है ना, और हर घड़ी में बाबा के ही वाह वाह के गीत गाते चलो जी। हाँ जी बोलो। नहीं उसने कर्म नहीं किया था, वो उसका हिसाब बना जो उसने बाद में चुकाया है, क्योंकि उसमें तो प्योर सोल आई थी ना, तो उसका कोई हिसाब किताब पहले का नहीं था, लेकिन वो उसी समय बना जो फिर वो आत्माओं को भी बाद में चुकाना पड़ा, उस जन्म उससे पहले का कोई हिसाब किताब नहीं था, उस समय नया बना था ये, जो फिर बाद में फिर उन चुकाना पड़ा होगा सबको बाद के जन्मों में, बाकी पहले का नहीं था। ठीक है,
तो सभी भरपूर हो गए ना, तो उषा दीदी को सभी थैंक्स करेंगे क्लैप करके, अमूल्य समय हम सबको दिया और सबके दिल में आ रहा है वाह वाह उषा दीदी, वाह वाह हमारा भाग्य और वाह वाह ये क्लास मिला। तो सबकी तरफ से थैंक्स, और सबको बहुत इजी भी हो गया, वाह वाह करते रहो, बेफिक्र बन के चलते रहो। एक और बात मुझे दिल
लेकिन
में आई,
उसमें केयरलेस नहीं होना,
बहुत
गलतियां करो और फिर कहो वाह 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 वाह, ये नहीं सिखाया हमने, ये नहीं करना है ना, गलती नहीं करना है, और गलती करके फिर कहो कि वाह बाबा वाह वाह ड्रामा वाह वाह मेरा भाग्य है ना ये वाह मेरे कर्म, ऐसा नहीं। जो सामने वाले को गुस्सा आना शुरू हो जाए आपके ऊपर है ना, इसलिए गलती करके वाह वाह के गीत नहीं गाना है, गलती को सुधार करके आप वाह वाह के गीत गाओ है ना, नहीं तो लोग कहेंगे इसको क्या हो गया, ये नॉर्मल ही नहीं लग रहा है, गलती भी कर रहा है और वहाँ खुश हो रहा है ना, गलती नहीं करना है।
एक बात शेयर करना चाहूंगी उषा दीदी के लिए, वैसे रामायण और गीता के लिए एक्सपर्ट ही है कहते हैं, इनके टॉपिक्स आपने सुने होंगे, जगह जगह पर भी जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, दीदी जो है ट्रेनिंग होती है जब बहनों की टीचर्स ट्रेनिंग उसमें भी, और उसके अलावा भटिया होती है हमारी उसमें भी दीदी के क्लासेस सुनते हैं, तो बहुत अच्छा अनुभव लगता है जब वो क्लासेस के बीच में शेयर करते हैं। मुझे आज तक याद है क्लास में जब इन्होंने शेयर किया था कि सेंटर लाइफ में जैसे उनकी शुरुआत हुई थी तो बिल्कुल साधारण सेवा ये कर्म करते हुए भी, लेकिन जो स्थिति है मनोस्थिति है वो बहुत बहुत ऊंची बनाई थी, और जिसके फलस्वरूप में हम देख रहे हैं उषा दीदी आज हम सबके बीच में है इतनी ऊंची स्थिति में। उषा दीदी
हाँ, मन अगर कोई दुख की सीन आई तो उसको भी स्वीकार कर लेना कि ये दुख भी कोई जन्मों का कर्मों का हिसाब है, जो आज चुप तो करने का समय आ गया है। हाँ, विजय माला के दाने बन जाएंगे ना, विजय माला में तो वही आएंगे जिसके पास अष्ट शक्ति हो। हाँ
Bye. से आपकी।